शांति शांति। आप सबको नमस्ते। मैं आपके सामने दो सप्ताह में, दो सेशन में, आई वांट टू डिस्कस व्हाट आर द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ आर्य समाज, विच इज आवर कोर प्रिंसिपल्स। यहां पर भी दोनों साइड में लिखे हुए हैं। आई लुक एट देम एज मास्टरपीस authored by Maharishi Dayanand. In one page he has produced what could be the constitution for the entire humanity, and one day it will be probably recognized as such. It has the entire directions for the whole humanity to lead a life for individual peace as well as world peace. So we look at it in that perspective. It is originally written by Maharishi Dayanand in Hindi. So that is the original, authentic version. Of course, we have a lot of English translation, but as you will see in this next few minutes and next week also, it is very, very difficult to translate into English because there are certain technical terms which don't quite have their English counterpart. Let's look at the first niyam. मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मुझे इसकी गहराई समझने में बहुत वर्ष लगे। जब 20 साल पहले मैं प्रचायक बना तब भी मैं इसके बारे में पूरा जानकार नहीं था। आज भी मैं नहीं समझता कि महर्षि ने जो गहराई से यह वाक्य लिखा है एक लाइन में, इसको मैं पूरा समझ पाता हूं या नहीं। मैंने बहुत सी किताबें देखी हैं पर मैं कभी संतुष्ट नहीं हो पाया, और इस पर मैं थोड़ा समय लगाऊंगा और आप देखेंगे इस एक वाक्य के लिए हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि वह व्यक्ति बहुत ही अनोखा व्यक्ति है, एक ऋषि है। 5000 वर्ष के बाद एक विचित्र मनुष्य का यहाँ आविर्भाव हुआ। इस एक वाक्य की इतनी महिमा है मैं आपको बता नहीं सकता, पर मैं कोशिश करूंगा। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यहां पर वो लिखते हैं कि जितनी भी विद्या है इस संसार में जो हमें जाननी है, एंड यू नो विद्या मीन नॉलेज, नॉलेज इज टू नो ए थिंग एज इट इज, है ना। जैसे ये लकड़ी की मेज है, इसको पूरा जानना, तो ऑब्वियसली द कारपेंटर हु मेड इट, ही हैड हिज डिजाइन इन हिज माइंड, देन ही मेड इट। Now its raw material is wood. So you know, as a seeker of the knowledge, I can try to know all the aspects of this little desk. This thing exists, and all the corresponding characteristic of this thing is its knowledge. So knowledge is to know a thing as it is. So generally, that is what he is saying. When we are in the universe, there are infinite things. And everything has its characteristics and associated knowledge. So, वो सब हो गया सत्य विद्या। And as I said, विद्या corresponds to a thing, तो वो है पदार्थ। तो the things and the knowledge, ये दोनों चीजों को साथ रख के देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो जो चीजें हैं इस दुनिया में और जो corresponding विद्या है, इन सब का आदि मूल, इनका जो origin है, एब्सोल्यूट, एक तो है मूल लिख देते तो भी पर्याप्त था। जैसे मैं कह सकता हूं कि इसका मूल एक कारपेंटर है, लेकिन फिर कोई कहेगा नहीं नहीं, लकड़ी नहीं होती तो कारपेंटर कैसे बना सकता था। तो इसकी मूल में कारपेंटर भी है, लकड़ी भी है। तो ये बात पूरी तरह से यदि समझाई जाए तो उस ढंग से। लेकिन सृष्टि के बारे में एक विचित्र चीज है कि सृष्टि का कारपेंटर भी परमात्मा है और जो लकड़ी है वो भी परमात्मा ने बनाई है। तो इसलिए उन्होंने कहा मूल के भी मूल आप जाएंगे तो वह आदि मूल परमेश्वर है। तो यह इसका मोटे तौर पर भाव है, और मैं इसको थोड़ा और विशेष ढंग से समझाना चाहता हूं क्योंकि यह बड़ा जटिल है। यह एक छोटा सा वाक्य, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर। तो मैं आपके पास पहले तो एक फिलॉसफी का टर्म है जो हमारी फिलॉसफी में आता है, नाम रूप। नाम जैसा कि आप जानते हैं, नाम यानी वस्तु का नाम, विच इज ए नाउन, रूप है उसका शेप एंड फॉर्म। सो कोई भी चीज है, जैसे ये छोटी सी मेज है, इसका ये एक नाम है और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको बोलते हैं रूप। सो नाम रूप में क्या आ गया, थिंग्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम मनुष्य को सेंटर करके देखे हैं तो लाइक दिस थिंग, एज वी वॉक इन टू दिस होल वी हॉल वी सी दिस पर्टिकुलर डेस्क। तो ये चीज पहले है और फिर बिकॉज ऑफ माई इंक्विजिटिव माइंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या चीज है, कहां से आई, किसने बनाई, कैसे बनाई। तो हम मनुष्य के लिए देखेंगे तो पहले तो सृष्टि में पदार्थ है, फिर उसकी विद्या है ना। तो हमारा सीक्वेंस है, पहले नाम, पहले चीज है, बाहर जाएंगे एक पेड़ है, सड़क है, पर्वत है, ये सब चीजें, ये चीज दिखाई देती है। देन बिकॉज आई एम एन इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बींग आई ट्राई टू नो अबाउट दोज थिंग्स। तो हमारा सीक्वेंस क्या है, नाम और रूप, नाम पहले रूप बाद, पहले चीजें आएंगी फिर हम उसको जानना चाहते हैं। पर ईश्वर के साथ थोड़ा उल्टा है, इसी बात को मैंने यहां क्या लिखा, वी गेन नॉलेज ऑफ थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। जैसे मैंने ये लैपटॉप खरीदा कहीं से, तो ये लैपटॉप पहले से ही है, इसको बनाने वाला कोई इंजीनियर है, डिजाइनर है, ही हैड ऑल इन हिज माइंड दिस डिजाइन, देन विद अ टीम एफर्ट ही हैज कंस्ट्रक्टेड प्रोड्यूस दिस लैपटॉप। दिस इज हाउ वी फंक्शन। तो हमारे लिए क्या है, पहले चीज आ जाती है फिर हम उसको जानना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। बट परमेश्वर क्रिएट्स थिंग्स बेस्ड ऑन द नॉलेज ही है, क्योंकि उसने सृष्टि बनाई है तो उसको पहले उसके पास नॉलेज है, बाद में उसने सृष्टि बनाई। ये उल्टा सीक्वेंस है, इस बात को समझना होगा, तभी आप महर्षि दयानंद के इस सीक्वेंस को समझ पाएंगे कि उन्होंने पहले सत्य विद्या लिखा, बाद में पदार्थ लिखे। उन्होंने क्या कहा कि पहले तो विद्या है क्योंकि वो परमात्मा के पास पहले से, परमात्मा को मालूम है कौन सी चीज कैसे बनानी है। He has all the knowledge that we seem to find in the universe, and according to that knowledge, he has produced, he has created the things. So, यहाँ पर ये sequence थोड़ा उल्टा है, जो हमारे जीवन से, हम जो जीवन शैली में देखते हैं वैसा नहीं है, क्योंकि हमारी स्टाइल क्या है, नाम रूप वाली है, और उसके साथ उल्टा है, उसे पहले सब कुछ मालूम है, फिर वह उसको क्रिएट करता है, बनाता है। तो इसलिए महर्षि का ये वाक्य, पहले सत्य विद्या है और दैट करेस्पॉन्ड्स टू द पदार्थ दैट एग्जिस्ट। इसी बात को मैंने देखा कि ये योग दर्शन में एक सूत्र आता है, सत्य निरतिशयम सर्वज्ञत्व बीजम। इसका हम अर्थ करते हैं कैसे, कि परमात्मा सर्वज्ञ है, पर यहाँ क्या लिखा है, सर्वज्ञत्व बीजम। एक स्टेप महर्षि पतंजलि बहुत आगे चले गए। सर्वज्ञ क्या है, थ्योरेटिकली अब देखिए, हम तो अल्पज्ञ हैं, हम थोड़ा बहुत जानते हैं, पर थोड़ी देर के लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मैं सब कुछ जान जाऊं, एक मनुष्य सब कुछ जान जाए तो मनुष्य क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, है ना। पर परमात्मा वैसा सर्वज्ञ नहीं है, परमात्मा क्या है, वो सर्वज्ञता का बीज उसके अंदर पहले है, उसके अंदर पहले वो नॉलेज है। हमने सर्वज्ञता कैसे प्राप्त की, एक एक स्टेप से सीख सीख कर, तो उसने ऐसे नहीं सीखा, उसके अंदर तो बीज के रूप में वो सर्वज्ञता है, वह हो गया सर्वज्ञत्व बीजम। इसी बात को महर्षि दयानंद ने, ये बड़ा कमाल का स्टेटमेंट है उनका, कि पहले वो आदिमूल परमेश्वर कैसा है, उसके पास सारी सत्य विद्या है, जब पहले काल है तो भी उसके पास विद्या है, अब जब सृष्टि बनानी है तो उसने उस विद्या के अनुसार सृष्टि के पदार्थ बनाए, ये इसका भाव है। मैं उनके इस वाक्य पर बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड हूं, इसलिए मैं आपको थोड़ा और गहराई से बताना चाहता हूं। देखिए, ये इतना बड़ा ऋषि है महर्षि बादरायण, जिन्होंने वेदांत दर्शन लिखा, जिसका सार उनके पहले चार सूत्रों में है। मैं बताना चाह रहा हूं कि इन चार सूत्रों को महर्षि दयानंद ने उस छोटे से वाक्य में बांध दिया। महर्षि बादरायण क्या लिखते हैं, इसी को ब्रह्म सूत्र बोलते हैं वेदांत दर्शन को ही। इसके पहले चार स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये उनकी शैली है, ये कहना चाह रहे हैं कि मैं इस पुस्तक में किस विषय पर विचार कर रहा हूं। किस विषय पर विचार करते हैं? ब्रह्म। द इंक्वायरी इज अबाउट ब्रह्म। ब्रह्म शब्द का अर्थ ऐसे मोटे तौर पर है समथिंग विच इज इनफाइनाइटली ग्रेट, कोई भी बहुत महान चीज है उसको ब्रह्म कहते हैं। पर यहां पर ज्यादातर ब्रह्म शब्द आया है उस परमेश्वर के लिए। तो ये क्या कहा उन्होंने? ब्रह्म जिज्ञासा, देयर इज अ डिजायर टू नो अबाउट ब्रह्म। ये इसको हम कहते हैं ब्रह्म की अनुवृत्ति है। अब ब्रह्म शब्द की अनुवृत्ति पूरे शास्त्र में चलेगी, ये उनका ग्रंथ है। इसका नाम ब्रह्म सूत्र भी है और वेदांत दर्शन भी है। आप जानते हैं हमारे जो छह दर्शन है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदांत, इसमें ये अंतिम है। अंतिम होने के कारण इसको वेदांत भी बोलते हैं, वेद का अंत। तो उन्होंने क्या कहा? ब्रह्म के बारे में हम जानना चाहते हैं। अब देखिए यहां इनका रुख थोड़ा अलग है। ये क्या कहते हैं? इनका है सत्य विद्या और पदार्थ नहीं है, पहले पदार्थ है फिर सत्य विद्या। ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये मनुष्यों को उपदेश दे रहे हैं कि हम जब जगत में आ जाते हैं तो आंख खोलते हैं तो पहले हमें चीजें दिखाई देती है ना। तो महर्षि बादरायण के मन में क्या है कि मैंने जब आंख खोली, होश आए मुझे, होश आया तो आंखें खुली तो मैंने जगत में चीजों को देखा। तो पहले पदार्थ आए, पहले चीजें दिखाई दी। तो चीजें कैसी हैं? तो बोलते हैं चीजें क्या है? जन्म आदि अस्य यतः, यतः पंचमी का है, ब्रह्म से ये चीजें आती हैं। ये चीजें कैसी हैं? ब्रह्म इनको जन्म देता है। जन्म ही देके ये चीजें, ऐसा नहीं है कि जन्म देकर पड़ी जाती हैं। जन्म के बाद कुछ समय तक गमन करती है, कुछ समय तक हर चीज, मैंने भी जन्म लिया, कुछ संसार, कुछ वर्ष मैं भी संसार में घूमूंगा इधर उधर, गमन करना उसको बोलते हैं। जन्म लेना फिर गमन करना, फिर क्या है? एक दिन मैं भी इस संसार से चला जाऊं। तो इसमें क्या आ गया? जन्म आदि, जन्म, गमन और फिर चले जाना। उसके लिए संस्कृत शब्द है तिष्ठति। तिष्ठति का मतलब है बैठ जाना। ये मैंने आपको तीन शब्द इसलिए बोले कि आप समझ जाएंगे कि ये जगत शब्द कैसे बना है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जगत शब्द कैसे बना? यहां पर सब चीजें ज से जन्म लेती हैं, ग से गमन करती हैं, कुछ देर तक इधर उधर चलती फिरती हैं, कि त से तिष्ठती, बैठकर चली जाती है ना, वो चली जाती है। तो ये जगत में सब चीजों का ऐसा व्यवहार हमें दिखाई देता है। कोई भी चीज यहां अनादि काल तक स्थिर नहीं रहती, आती है, दे गो थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, देन दे डाई अवे, फेड अवे। तो इसको जगह, इस सबको, इसको महर्षि बादरायण ने क्या कहा? जन्म आदि, आदि में ये तीनों चीजें आ गई, ज ग त सब आ गया इसमें। उन्होंने कहा जन्माद्यस्य यत, ब्रह्म से सब चीजें उत्पन्न होती हैं, गमन करती हैं और फिर चली जाती हैं। इन सबको, ये जो भी हलचल हो रही है इस दुनिया में, ये किसके द्वारा हो रही है? ब्रह्म से। ये पहला उनका स्टेटमेंट नंबर टू है, जन्माद्यस्य यत। तो ब्रह्म के बारे में वो क्या बता रहे हैं? ब्रह्म गिव्स राइज टू द बर्थ ऑफ ऑल द थिंग्स, दे बिहेव इन अ सर्टेन मैनर एंड देन दे डिसअपीयर इन अ सर्टेन मैनर। ये क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स दैट अपीयर इन द सृष्टि। फिर उन्होंने क्या कहा? परमात्मा ने सृष्टि की चीजें ही नहीं बनाई हैं, उसका एसोसिएटेड नॉलेज भी दिया है हमें, है ना, वेद के रूप में नॉलेज भी दिया। वो हम भी हमें दूसरे तीसरे नियम में देखेंगे। तो शास्त्र बोलते हैं, शास्त्र भी उसने दिए। शास्त्र भी कहां से आए? योनि। योनि शब्द आप जानते हैं, योनि है जहां से चीज उत्पन्न हो। मैं भी अपने माँ के गर्भ से आया, उसको कहें माँ की योनि, है ना, शास्त्र योनित्वा। तो उन्होंने क्या कहा? ये जो नॉलेज है वेद का, इसका भी ओरिजिन क्या है? ब्रह्म है, है ना, शास्त्र योनित्वाद। ठीक है, अब अगले स्टेटमेंट बड़ा कमाल का उनका, चौथा। वो कहते हैं कि जगत में जो ये जो चीजें हैं और ये जो वेद का नॉलेज है, इसमें वन टू वन करेस्पॉन्डेंस है, है ना, तत्तु समन्वयात, समन्वय है उसमें। जो वेद में जो लिखा है वही सृष्टि में हमें दिखाई देता है, या जो सृष्टि में हमें दिखाई देता है वही हमें वेद में देखने को, पढ़ने को मिलता है। इसका मतलब जैसे ये मैंने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप के साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी आया, अब उसको मैंने खोल कर देखा, इसको भी खोला, उसमें कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, मैंने फॉलो किया। अब यदि उसके इंस्ट्रक्शन में कोई ऐसा बटन होता, कोई नॉब होता जो इसमें नहीं है, तो मैं कहता ये मैनुअल किसी और चीज का है, ये मैनुअल उसका नहीं है जिसने ये लैपटॉप बनाया। नहीं, देयर शुड बी वन टू वन करेस्पॉन्ड। आप एक नया टीवी लाएंगे, टीवी का डिब्बा खोलेंगे, उसके अंदर मैनुअल, मैनुअल में कोई नया नॉब लिखा हुआ है पिक्चर में, लेकिन टीवी में आपको दिखाई नहीं देगा, तो बोलेंगे दिस मैनुअल डजंट करेस्पॉन्ड टू दिस टीवी सेट, इजंट इट। तो वो समन्वय की बात है, यदि वो एकदम करेस्पॉन्ड कर रहा है तो आप बोलेंगे हाँ ये मैनुअल प्लस दिस टीवी सेट बोथ आर कमिंग फ्रॉम द सेम ओरिजिन, सेम मेकर, इज इट नॉट। तो वही महर्षि वादरायण कहते हैं वेद और यह जो जगत, ये दोनों एक ही व्यक्ति से आए जिसका नाम ब्रह्म है, क्योंकि दोनों में वन टू वन करेस्पॉन्डेंस है। तो यहां भी आप देखेंगे, क्योंकि यह पर्सपेक्टिव क्या है, मनुष्य का है, मनुष्य ने जब आंख खोली तब वो जगत की चीजों को देख रहा है, और बिकॉज वी आर ऑल इंक्विजिटिव, वी वॉन्ट टू नो अबाउट एवरीथिंग, तो वो वेद के नॉलेज की बात की शास्त्रियों नित्वात में। फिर महर्षि वादरायण ने बड़ी गारंटी से कह दिया कि दोनों में वन टू वन करेस्पॉन्डेंस है, इसीलिए दोनों का ओरिजिन एक ही जगह से है, उसी का नाम ब्रह्म है। लेकिन महर्षि दयानंद ने देखिए इसको वैसे लिखा, पहले पदार्थ ने लिखे, पहले का सत्य विद्या, क्योंकि ये उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जब सृष्टि नहीं बनी है। जब सृष्टि बनी नहीं है तब की क्या अवस्था है, उसका महर्षि दयानंद वर्णन कर रहे हैं कि अब परमात्मा सृष्टि को बनाएंगे, चलाएंगे, इसका फिर प्रलय होगी, जो कुछ भी होगा, जो चीज उनके साथ हमेशा परमात्मा के साथ जो गुण कर्म स्वभाव हमेशा बने रहने वाले हैं, उसका वर्णन करते हैं कि परमात्मा के पास सारी विद्या है, परमात्मा के पास पूरा कौशल है, पूरा सामर्थ्य है, पूरा पराक्रम है, कि उस विद्या के अनुसार वो सृष्टि को बनाएंगे, हमें भेजेंगे, और हमारे जीवन के कुछ उद्देश्य होंगे और इस सृष्टि को चलाएंगे, इत्यादि इत्यादि। उस अवस्था का उन्होंने बहुत संक्षेप में वर्णन किया, ये जो सारी कुछ विद्या है और इसको मूर्त रूप देने की जो कला है, टू क्रिएट थिंग्स, और जो पदार्थ हैं, जो अकॉर्डिंग टू दैट विद्या, जो पदार्थ उस विद्या से जाने जाते हैं, उसका समन्वय है, ऐसा नहीं है कि नॉन करेस्पॉन्ड, उन सब का मूल दे ओरिजिनेट फ्रॉम परमात्मा। अब आदि मूल क्यों लगाया, कि ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी से बोरो की, उसकी अपनी ही है आदि मूल परमेश्वर। बहुत ही फैंटास्टिक स्टेटमेंट है, उस महर्षि को सत सत प्रणाम। एंड आई डू फील ऑल ऑफ अस ऑल सिटिंग इन दिस हॉल शुड कंसिडर योरसेल्फ वेरी फॉर्चुनेट दैट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू नो दिस ग्रेट पर्सन महर्षि दयानंद। आज दुनिया में उसको वो मान्यता नहीं मिल रही है, लेकिन एक दिन अवश्य मिलेगी। ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द लास्ट 5000 ईयर्स। सो लेट्स मूव ऑन। ये मैंने आपके सामने उसके पहले नियम के बारे में चर्चा की, दूसरा नियम लंबा है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। जैसा कि मैंने टाइटल में लिखा है, ईश्वर स्त्योग परमेश्वर। देखिए अचानक अभी उनकी बात चल रही थी, यहां है आदि मूल परमेश्वर, अब अगले वाक्य में वो क्या लिखते हैं, ईश्वर का स्वरूप बताया। कितना रहस्य है, इसको समझना बड़ा बहुत, यू हैव टू बी हाईली क्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड व्हाट महर्षि दयानंद। और इसीलिए दुनिया को हम सबको कोशिश करनी है कि लोगों को, मैं इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं हूं कि दुनिया महर्षि दयानंद को कम जानती है या नहीं जानती। आई सी इट एज ए चैलेंज कि हमें दुनिया के लोगों को थोड़ा ऊपर लाना है, ताकि वो महर्षि दयानंद को समझ सके, समझना इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने ही बताया, पहला नियम को पूरा जितना मैं समझ सका इसमें मुझे कितने साल लग गए। अब देखिए प्रश्न उठता है, पहले उन्होंने परमेश्वर कहा, अब इसे ईश्वर क्यों कहा, बताइए। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। मैंने थोड़ा इसका उत्तर दे दिया है कि पहला नियम उस परिस्थिति का है जब परमात्मा की सृष्टि भी नहीं बनी है, जब वह, इसको हम बोलचाल में, हमारी फिलॉसफी में दो टर्म आते हैं, पर ब्रह्म। बहुत सारे मंत्र आते हैं कि परमात्मा इज बियॉन्ड वाटर, हम जो जानते हैं वह एक पाद पेयुष, एक चौथाई हिस्सा है जो सृष्टि में दिख रहा है, तीन चौथाई तो हम उसको जान ही नहीं पाएंगे, ऐसा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक है परम परमेश्वर जो बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, जो हम कभी नहीं समझ सकेंगे कभी भी, उसको कहते हैं पर ब्रह्म। हम परमात्मा को कैसे जानते हैं, उसकी बनाई हुई सृष्टि के माध्यम से जानते हैं। नहीं, हम परमात्मा को, जैसे इस कारपेंटर को मैं कैसे जानता हूं, बिकॉज ही क्रिएटेड दिस डेस्क। हम परमात्मा को सृष्टि के निर्माता सृष्टिकर्ता के रूप में जानते हैं, उसको कहते हैं सबल ब्रह्म। इसको क्या कहते हैं, सबल ब्रह्म, परमात्मा का एक है रूप पर ब्रह्म, जो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट हमेशा रहता है, एक है सबल ब्रह्म, उसी के लिए शब्द उन्होंने चुना, वो है परमेश्वर। अब हम उसको जितना जान पाएंगे वह है ईश्वर। सबल ब्रह्म को उन्होंने कहा ईश्वर, उनके एक एक शब्द में बड़ा रहस्य होता है। अब उन्होंने ऐसा नहीं कह दिया ईश्वर सच्चिदानंद निराकार, ईश्वर को पहले क्या बताया, सच्चिदानंद स्वरूप। अब ये भी इतना बड़ा टेक्निकल टर्म है, मैं अपनी क्लास में एक एक घंटा लगाता हूं ये समझाने के, स्वरूप क्या बोला है। पतंजलि भी कहते हैं ना, योगश चित्त वृत्ति निरोध, योग क्या है, चित्त की वृत्तियों को रोक देना, फिर क्या होगा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, जो दृष्टा है, ऑब्जर्वर है, जो जीवात्मा है, तब उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। बोलचाल में ये सब शब्द चलते हैं तो हमें लगता है कि स्वरूप यानी स्वरूप, तो स्वरूप ये बड़ा टेक्निकल टर्म है, ध्यान से सुनेंगे आप। हर चीज की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो उसके गुण है, जो मैंने नाम रूप की बात की, गुण और गुणी, विशेषण और विशेष्य, है ना। माई लेफ्ट हैंड इज द थिंग एंड राइट हैंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसके बहुत सारे, इंग्लिश में बोल देंगे दिस इज नाउन, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज नाम रूप, दिस इज विशेष्य विशेषण, गुणी गुण, इस तरह से हम बातचीत करते हैं। तो ईश्वर के ये जो गुण है, गुण मैं कह भी नहीं सकता, सच्चिदानंद, ये उसका स्वरूप है। तो इस जब स्वरूप की बात करते हैं, सच्चित आनंद, तो इसमें गुणी और गुण वाली भाषा नहीं बोली जा सकती। बड़ी अजीब सी बात है ये, बहुत ही अजीब सी बात, ये समझाना भी इतना कठिन है, पर मैं कोशिश कर रहा हूं। हमारा क्या स्वरूप है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कहा तुम्हें अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, कब होगा, जब चित्त की सारी वृत्तियां रुक जाएंगी। तो मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप है मेरा चित्त रूप, मेरा चेतना मेरा गुण है। गुण शब्द मैं कह नहीं सकता, असल में चेतना मेरा, इसको बोल, इसको फिलॉसफी की भाषा में कहते हैं चित्त रूप। जैसे यहां सच्चिदानंद स्वरूप है, जीवात्मा का रूप क्या है, चित्त रूप। चित्त और रूप, अब संधि हो जाती है त का द हो जाता है, चित्त रूप बोलते हैं। आपने ये शब्द शायद सुना नहीं होगा, नया शब्द होगा। आप इसको, मैं समझाना चाहता हूं, मैं अपनी क्लासों में तो काफी समय लेता हूं, थोड़ा आपका यदि मैथमेटिक्स का और कैलकुलस का बैकग्राउंड है, आसान है, दूसरे लोग भी ध्यान से सुनेंगे समझ जाएंगे। मैं इस लाइट का एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये एक छोटा सा लैंप है विच इज एमिटिंग लाइट। अंदर हम जाएंगे तो इसके अंदर एक फिलामेंट है, फिलामेंट में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो इट इज गेटिंग हीटेड, इट इज एमिटिंग लाइट, एज सिंपल है ना। अब आपको क्या है, एक पदार्थ है, छोटा सा हीटेड फिलामेंट है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एमिटिंग लाइट। अब यहां पर क्या है, गुणी और गुण है, गुणी क्या है, फिलामेंट है, गुण क्या है, एमिशन ऑफ लाइट। ये भी बात में ये हो नहीं रही। अब इसी में आप मैथमेटिकली लिमिट लीजिए कि दिस इज ऑफ जीरो साइज, बहुत कल्पना करना, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट. नाउ यू टेक ए मैथमेटिकल लिमिट की ऑफ फिलामेंट क्या है, जीरो, एक पॉइंट लाइक एंटिटी है. अब क्या बोलेंगे कि उस फिलामेंट का यह स्वरूप है कि बट इट इज स्टिल एमिटिंग लाइट. आप कल्पना कीजिए, आप कल्पना ही करनी पड़ेगी कि एक ऐसा फिलामेंट है इस दुनिया में, हम जानते नहीं, विच इज जीरो लेंथ, जीरो विड्थ, जस्ट ए पॉइंट, लेकिन वो लाइट दे रहा है. कोशिश कीजिए आप कल्पना करने की. तो दैट इज व्हाट आवर जीवात्मा इज, है ना. हमारा जीवात्मा कैसा है, इट इज नॉन फिजिकल, इट इज ए पॉइंट लाइक सिंगुलैरिटी, एक छोटा सा पॉइंट है. जैसे ज्योमेट्री में बच्चे ग्राफ पेपर पर एक पॉइंट बना देते हैं पॉइंटेड पेन से, बट दे नो इट कॉन्सेप्चुअली पॉइंट हैज नो लेंथ नो विड्थ. लेकिन बच्चा 4.2 में चार एक्स एक्सिस पर चार यूनिट, वाई एक्सिस पर टू यूनिट्स, वहां जाके एक पॉइंट लिख देता. जैसा वो पॉइंट है वैसा मेरा जीवात्मा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो चेतना का एक लाइट दे रहा है. अभी हमारे संजय जी मेडिटेशन करा रहे थे, क्या बोल रहे थे कि हमारे गर्भ में एक लाइट है, बर्गर की लाइट, एक ऐसा पॉइंट है जो ब्राइट लाइट दे रहा है ना. तो वो जैसा मेरा चित रूप हो गया. तो अब वहां पर कोई पदार्थ नहीं है, उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये उसकी इंटेंसिक इनहेरेंट क्वालिटी है. आप समझ गए ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो बोलेंगे नाम और रूप में, गुण में. जब इंटेंसिक क्वालिटी हो कि वो जो जीवात्मा है वो चेतना की लाइट फेंकता, उसका अपना कोई डायमेंशन नहीं है, तो चित रूप हो गया, है ना. अब इसी चीज को आप ईश्वर पर ले जाइए, तो ईश्वर के ये गुण नहीं है, यह उसका स्वरूप है. क्या क्या स्वरूप है, सत रूप है. सत यानी एग्जिस्टेंस, ही इज बाई नेचर, ही जस्ट एग्जिस्ट, देयर इज नो कॉज फॉर हिज एग्जिस्टेंस, इट जस्ट एग्जिस्ट. दूसरा क्या है, चेतना, कॉन्शियसनेस, हम जानते हैं चेतना. तीसरा क्या है, आनंद, वो अपने सेचुएटेड स्टेट में रहता है. ये उसका गुण नहीं है, ये उसका स्वरूप है. बड़ा फिलोसॉफिकल टर्म है, इसलिए मैंने थोड़ा समय लगाया. बाकी सब भी उसके गुण है. फिर ये सब चीजें कॉज एंड इफेक्ट से एनालाइज की गई हैं कि निराकार है. यदि वो आकार होता तो हमारी आंखों से दिखता, नहीं दिखता, उसका कोई आकार नहीं. सर्वशक्तिमान, वो जो कुछ भी करना चाहता है वो बिना किसी की सहायता के, रिक्वायर्स नोबडीज असिस्टेंस, वो कर लेता है अपने काम. न्यायकारी है, जो जैसा है उसको वैसा ही देता है, उसमें कोई 19-20 का कुछ नहीं है. एब्सोल्यूटली जस्टिस मैकेनिज्म, जिसको हम कर्म फल का सिद्धांत कहते हैं, वो सब लागू है. जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है. दयालु है, दयालु मतलब उसने सब कुछ वैसा दिया है जो हमारे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है. आज मैं जिस स्थिति में हूं, मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, वो सब साधन उसने मुझे दिए हुए हैं. देयर शुड बी एब्सोल्यूटली नो रीजन टू कंप्लेन. बहुत से लोगों को शिकायत होती है, मुझे गरीब घर में पैदा किया, मुझे ये हुआ, मेरी शिक्षा नहीं हुई, ये है, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे ये नहीं होता, मेरे पांव नहीं चलते. यू कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ कंप्लेन, बट परमात्मा दयालु है, फिर भी कुछ ना कुछ आपके पास है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं. यू कैन नॉट कंप्लेन. अजन्मा, उसने जन्म नहीं लिया है. अनंत, इनफाइनाइट, इन स्पेस एंड टाइम इज इनफाइनाइटली पेड. निर्विकार, ही डजंट गो थ्रू एनी ट्रांसफॉर्मेशन, फिर कोई विकृति हो सवाल ही नहीं हो. अनादि, यू कैन नॉट आस्क व्हाट इज द कॉज ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, उसका और न भी कोई ऐसा समय था जब वो नहीं था. अनुपम, ऑफकोर्स देर इज नो अदर एंटिटी वेरी क्लोज टू हिम, ही इज ऑफ हिज ओन काइंड. सर्वाधार, उस ही इज द आधार, ही इज द सपोर्ट फॉर ऑल दैट एग्जिस्ट. सर्वेश्वर, उसका हुक्म चलता है, उसकी इच्छा के अनुसार ही इस संसार में सब कुछ होता है. सर्वव्यापक, वो सब जगह फैला हुआ है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां वो नहीं है. और उसका फैलाव कुछ अजीब सा है कि वो अंदर से भी फैला हुआ है, इसको उन्होंने कहा सर्व अंतर्यामी, है ना. वो जैसे इस पूरे हॉल में तो है ही, इस डेस्क के अंदर भी घुसा हुआ है ना, तो बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट मैकेनिज्म है, लेकिन ही इज पेनिट्रेटिंग अदर, ही डजंट गो थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसको यानी डीके होने का सवाल ही नहीं उठता है। डीकेइंग विद टाइम, डिग्रेडेशन, ये सब नहीं होता। विल ही एवर डाई? नो, वो हमेशा ही ऐसा ही रहेगा। ही नेवर डाइज, अभय, ही हैज नो फियर फ्रॉम एनीबडी, नित्य, ही इज एटर्नल, पवित्र, वो पवित्र है, उसमें कोई किसी तरह का पाप, किसी तरह का दोष नहीं है, एंड ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। क्या सब गुण बताए, अंत में ये भी बता दिया वो उसका कर्म क्या है, टू गिव राइज टू द क्रिएशन एज सच। फिर उन्होंने हमारे लिए बताया मनुष्य का क्या रिलेशनशिप है, पशु पक्षी को इससे मतलब नहीं है, क्या हम जैसे एक छोटा बच्चा खेलता कूदता पढ़ता लिखता बाद में अपने माँ अपने पिता की गोद में जाना चाहे। जो बच्चे ऐसा नहीं कहते, हमें उन पर दया आती है, उनके लिए हम अनाथालय खोल देते। हमारे आयुष्मान ह्यूस्टन देव जी ने एक अनाथालय खोला, फिर दूसरा खोल दिया पांडिचेरी में। ये सब हम कहते हैं और ये मनुष्य का स्वभाव है। अब हम बड़े भी हो गए हैं, हमारी माँ नहीं है, पिता नहीं है मेरे, लेकिन फिर भी हम, ये हमारा स्वभाव है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, एक कोई हमें ठिकाना चाहिए जहां हम जाकर कुछ आंसू बहा सकें या हमें कुछ सहारा मिल जाए। उसने परमात्मा, उसने क्या कहा, वही एक एंटिटी है, उसी की उपासना करनी योग्य, उसी की, उनकी एक एक मात्रा में बड़ा अर्थ है, ऐसा नहीं कहा उसकी ही, उसी की, ही एंड ओनली ही, उसी की उपासना की जानी चाहिए और हम सबको करनी चाहिए। तो आप सब जानते भी हैं मैं मेडिटेशन को बहुत वो कहता हूं और ये बहुत आवश्यक है, ईश्वर उपासना जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं, वही ईश्वर उपासना। ध्यान का क्या मतलब है, जैसे आज संजय जी ने करवाया, मन से वियुक्त हो जाना, मन से हट जाना। आप मन से जुड़े हैं तो जगत से जुड़े हैं, आप मन से जब अलग हो गए तो आप जगत से अलग हो गए, अब आप उसकी गोद में जा सकते हैं। यदि उसको नाउ ही विल डिसाइड, बच्चा माँ के पास चला जाता है, पर माँ डिसाइड करती है मैं इसको गोद में उठाऊं या ना उठाऊं, पर यह आपका कर्तव्य बनता है। जैसे बच्चा माँ किसे लिपटता है, आपको दिन में 10-12 मिनट वो जरूर करना चाहिए जो आज संजय जी ने किया है ना, ये उसी की उपासना करनी होगी एटलीस्ट वंस ए डे। हमारे यहाँ क्या है, हमारी परंपरा है दिन में 2 बार सुबह और शाम संध्या करनी चाहिए। संध्या वो नहीं है खाली मंत्र पढ़ दिया, सम्यक पूर्वक ध्यान। संध्या क्या है, सम्यक पूर्वक अच्छी तरह से वेल परफॉर्म्ड मेडिटेशन। उसका टेस्ट क्या है, आप अपने मन से आपकी चित्त की वृत्तियां सब रुक गई, मन की सारी हलचल रुक गई, अब आप परमात्मा से लिपट गए, अब वो गोद में आपको लेगा। यदि मन में कुछ भी है, तभी इन्होंने बड़ा अच्छा कहा, आप गायत्री मंत्र भी बोलते जाए हैं तो आपके मन से ही बोल रहे हैं, वो भी बोलना बंद करना होगा। आप गायत्री मंत्र के अर्थ पर विचार कर रहे हैं तो भी आप विचार में लगे हैं, वो भी बंद करना होगा। वो अच्छी चीजें हैं गायत्री मंत्र उसका अर्थ, लेकिन उपासना के समय सब हलचल बंद होनी है। वो जब बंद हुई आप उसके पास गए, उसने जब आपको गोद में ले लिया तब आपकी उपासना सार्थक। ये दूसरे नियम का थोड़ा मैंने आपको सार बताया। अब एक मैं नियम और ले जाऊं, ये आज का समय पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये अगले सप्ताह में बाकी नियम 7 नियम ले लूं। ये भी बड़ा, इस पर भी मैं थोड़ा समय दे देना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा आयुष माज के 10 नियम इज ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द एंटायर ह्यूमन, बट व्हेन आई से दैट आई हैव टू बी कॉन्शियस, क्योंकि देर आर नंबर ऑफ पीपल, वो कहेंगे वेद तो आपकी किताब है, हमारी तो ये है, हमारी ये है, लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इस पर हम थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आयुओं का परम धर्म है। परम हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री का, एक होता है कंपेरेटिव तो एक होता है सुपरलेटिव फाइनलिटी। तो महर्षि दयानंद ने हमें क्या कहा, धर्म तो बहुत कुछ है, नाना धोना भी धर्म है, लेकिन परम धर्म क्या बताया, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आयुओं, ये नहीं लिखा आय समाजियों का, क्या लिखा आयुओं का, जो आय गुण से है। आय कौन है, जो अच्छा व्यक्ति। आय शब्द की परिभाषा यास्क ने क्या बताई, आय ईश्वर पुत्र, ईश्वर का जो पुत्र, ईश्वर का पुत्र में पुत्र नहीं सर्टिफिकेट बनाता है कि मैं ईश्वर का पुत्र, पिता सर्टिफिकेट देगा है ना, मां सर्टिफिकेट देगी कि ये मेरा बेटा है। इसका सर्टिफिकेशन क्या है, जो मैं अभी उपासना की बात कहता था, आप कितने आयु हैं आपको पता चल जाएगा यदि परमात्मा ने आपको गोद में लिया या नहीं लिया। मां गोद में न ले, नहीं आज तूने गलती का काम, आज तूने बड़ोस में मेरी बदनामी कर दी, मैं तुम्हें गोद में नहीं लूंगी। मां गोद में लेगी तभी जब वो अपने बच्चे से नाराज नहीं है, कोई गलत काम नहीं कहता बच्चा तब। वैसे ही आपकी उपासना, यदि आप खुद जानना चाहते हैं मैं कितना आयु हूं, तो उसका एक ही तरीका है, आप उपासना में बैठिए और देखिए उस समय आपके मन में क्या हो रहा है। यदि आप दुनियादारी में लगे हुए हैं तो आपकी उपासना नहीं हो रही। यू विल हैव टू टेस्ट योर ओन उपासना। जब आप थोड़ी देर ब्लैंक माइंड होगा, थोड़ी देर फिर और डेप्थ आएगी, थोड़ी देर और, तब आपकी उपासना में प्रगति होगी, तब आपको लगेगा हाँ अब ईश्वर मुझे अपने पास लेगा। और जब ईश्वर अपने पास लेगा तो अच्छा लगेगा, जैसे गाड़ी नींद में अच्छा लगता है ना, गाड़ी नींद से जब हम उठते हाँ ये तो बहुत अच्छी नींद। तो हम मेडिटेशन क्या बताते हैं, यू ट्राई टू क्रिएट ए रेप्लिका ऑफ ड्रीमलेस डीप स्लीप बट इन सिटिंग पोजिशन, है ना। तो ये आपके लिए अच्छा टेस्ट है कि उस दिशा में कैसे आगे बढ़ना। तो परमात्मा ने क्या कहा कि जब वह गोद में लेता है तो ईश्वर पुत्र आप धीरे धीरे बनते जाते हैं, तो वैसे लोग कहलाते हैं आय। उन आयुओं के लिए महर्षि दयानंद ने कहा आपका परम धर्म क्या है, वेद को पढ़ना पढ़ना और सुनाना सुनना तो जो आय समाज का मुख्य काम है वो कर। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इस पर मैं जल्दी से दो चार मिनट में घर से क्या चाइल्ड स्पीकर है, अच्छा एक मिनट दिया मैं। गुड, वी हैव सम 5-7 मिनट्स एक्स्ट्रा एंड आई हैव 4 स्लाइड्स, सो इस नियम पर मैं 4 स्लाइड्स आपके सामने रख रहा हूं। बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं, एसेंशियलिटीज ऑफ द वेद, क्यों वेद का होना आवश्यक है। वेद क्या है, जो पहले मनुष्य को बताया गया। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या है, लोग समझते हैं वेद पुस्तक है, कागज पर जो काली स्याही से लिखे हुए एंड बाउंड वॉल्यूम, दैट इज वेद। तो वो समझते हैं जैसे ये सब किताबें हैं, मनुष्य लिखता है फिर छापे खाने में छपती हैं, वैसा है वेद। तो वो मनुष्य, वो परमात्मा ने कैसे लिखे, कुछ समझ में नहीं आती बात। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि वेद क्या है। वेद वो शब्द है, द वर्ड विच इज वी कॉल इट एज रिवील्ड वर्ड, जो ओम अग्निमीड़े पुरोहितम, ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है जो स्वस्ति वाचन में भी आता है। ये जो शब्द हैं प्लस ये जो बोले गए, ये वेद है, ये शब्द। इसी को एक दूसरा नाम क्या बोला, श्रुति। श्रुति यानी जो मैंने सुना। तो वेद को श्रुति इसलिए बोला कि हर मनुष्य ने क्या कहा, मैंने सुने, मैंने सुने। मैंने गायत्री मंत्र कहां से सुना, मैंने सुना, मैंने कोई लिखा थोड़ी है, मैंने किसी गुरु से सुना, इसीलिए गुरु मंत्र बोल। उससे पूछेंगे तुमने कहां से सुना, मैंने अपने गुरु से। तो ये चेन कहां जाएगी, वही पतंजलि ने कहा स पूर्वेशम अपि गुरु का लेना, सबसे गुरु का भी गुरु, सबसे पूर्वेशम अपि, पूर्वजों के भी पहले का गुरु कौन है, वो परमात्मा। तो ये जो मंत्र कहां से आया, परमात्मा से आया, इसीलिए हमने इसका नाम दिया श्रुति। तो ये शब्द आए, ये किताब छपी छपाई नहीं आई, ये तो हमने बाद में छापने, तो बहुत बाद में छापी गई। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये शब्द आए क्यों, ये आने की जरूरत क्या थी। तो ऐसे तो हमने पहले नियम में बहुत चर्चा कर ली है, ये लैपटॉप है तो इसका एक करेस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल होना चाहिए। मनुष्य है इस जगत में आया है, मनुष्य को इस सृष्टि में व्यवहार करना है, पशु पक्षी को जरूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य को एक वैसा फॉर्मल इंस्ट्रक्शन चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनती। तो मैं इसको इतना बेसिक समझ रहा हूं, जैसे परमात्मा की सृष्टि में सूर्य होता, सूर्य है, पृथ्वी है, पृथ्वी पर मनुष्य और सारे प्राणी जगत है, हम सबकी आंखें। लुक एट दिस डाइपोल, आईज एंड द सन। यदि मैं अंधा हूं मुझे दिखाई नहीं देगा, मेरी आंख खराब है, मेरी आंखें अच्छी हैं, लेकिन एकदम अंधेरा हो सूर्य नहीं होता, इट वुड नॉट वर्क, इज इट नॉट। तो परमात्मा एक ऐसा विलक्षण डिजाइनर है कि मैं संसार में आया, मुझे उसने आंखें दी, और मैंने जब आंख खोली तो क्या था, सूर्य का प्रकाश पहले से था। इट इज ए वेरी वेल डिजाइंड वर्ल्ड। हमारी मनुष्यों की, पशु पक्षी की, सबकी आंखें हैं, लेकिन यदि सूर्य नहीं होता, इट डजंट मेक सेंस, बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यदि सूर्य होता हमारी आंखें नहीं होती तो अंधेरा होता, यदि हमारी आंखें होती लेकिन सूर्य नहीं होता तो भी हम सबके लिए अंधेरा। तो वही चीज को आप थोड़ा आगे ले जाइए, अब हम मनुष्य समाज को देखते हैं। मनुष्य एक विलक्षण प्राणी है, क्योंकि पशु पक्षी का काम आंखों से, पांव से, पंख से चल जाता है, और जो उनको दिमाग लगाना है, दे कम विद व्हाट वी कॉल इंस्टिंक्टिव नॉलेज, द एक्विजिट नॉलेज इज ऑलरेडी एम्बेडेड इन देयर माइंड। हम मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं होता, नहीं तो देव जी ये स्कूल क्यों खोलती है सर। हम सबको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंटरनेट, टीवी और सारे पीरियोडिकल बुक्स हम सबके लिए दे दीजिए, इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ नॉलेज ट्रांसमिशन, क्योंकि वी हैव मच लेस इंस्टिंक्ट, वी हैव ए हायर पोटेंशियल, दैट इज आवर इंटेलेक्चुअल फैकल्टी। हम बुद्धि वाले, हमारे माइंड में एक ऐसा चीज है, एक ऐसा पावरफुल टूल है, दैट वी कॉल इंटेलेक्ट, बुद्धि, सत असत विवेकवती बुद्धि। एट एवरी मोमेंट आई एम कन्फ्रंटेड विद ऑप्शंस, ये करूं या ये, दिस और दैट, ये सही है या गलत, पाप है या पुण्य है, गुड या बैड। पशुओं का ये सब नहीं है, पशु कभी गलत हो ही नहीं सकता, पशु कभी पाप नहीं कर सकता, ये सब हमारे लिए। परमात्मा ने हमें लेवल फील्ड में ओपन छोड़ दिया है, फ्रीडम दे दिया, लेकिन क्या दिया, एक पावरफुल टूल दिया, बुद्धि, अब तुम अपनी जीवन, लेकिन दैट बुद्धि इज लाइक ए गुड ऑटोमोबाइल इंजन विदाउट फ्यूल। आपकी कार है, इंजन है, सब है, लेकिन पेट्रोल गैसोलीन नहीं है तो क्या है, बेकार। तो वही इंटेलेक्ट रिक्वायर्स नॉलेज, विदाउट नॉलेज इंटेलेक्ट कैन नॉट फंक्शन, दैट्स व्हाई वी हैव ऑल दिस एजुकेशन सिस्टम। तो वही इंटेलेक्ट इज लाइक माई इनर आईज, यदि अंदर की आंख में प्रकाश नहीं होता जो नॉलेज का, वो भी अंधेरा होता। तो ऑब्वियसली जैसे उसने मुझे आंख दी, उसके पहले सूर्य बना दिया, उसने मुझे बुद्धि दी, तो बुद्धि के साथ नेसेसरी बैंक ऑफ नॉलेज भी दिया, दैट इज व्हाट वेदाज इज, दिस इज अ वेरी वेल डिजाइंड वर्ल्ड। इफ हम पहले आ जाते बुद्धि के साथ लेकिन वेद नहीं होते, तो माया ये कुछ काम नहीं होने वाला था। इट इज सो बेसिक, सो एसेंशियल। एंड व्हाट इज द बेसिक नॉलेज, द वेरी फर्स्ट नॉलेज इज यू विल बी, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। सबसे पहली चीज क्या है, बच्चा का बोलना। माताएं सब जानती हैं, 4, 6, 8 महीने का बच्चा होता है, माँ उसके साथ लगी रहती है, ऐसे बोल पा, पा, पा। पहला अक्षर बच्चा क्या बोलता, पा, ओट से। क्यों बोलता है, क्योंकि उसकी माँ ने बोलकर सुनाया। ऐसे ऐसे लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया, हो भी गया। फ्रांस में पेरिस के पास एक बच्चा वॉज एबेंडेंट या मिस लॉस्ट, व्हाट एवर इट इज, एक बच्चा खो गया जंगल में। लंबी कहानी हो जाएगी, पर मोरल ऑफ द स्टोरी, इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, मैंने देखी हो फिल्म, याद आया, हमारे भाई हैं विद्यासागर गर्ग जी, उनके घर में उन्होंने मुझे डीवीडी पर दिखाई, याद है, अच्छी फिल्म। दे डिड ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन दैट चाइल्ड, 12 साल का जब हो गया तो जंगल में कोई जा रहे थे, दिखाई दिया, एक लड़का चार पांव से ऐसे ऐसे चल के दौड़ रहा भेड़िए की तरह, बट somebody said तो आदमी लग गया, भेड़िया नहीं है। फिर लोगों ने उसको पकड़ा हुआ जबरदस्ती 24 घंटे वहां बैठ, फिर उसको लाए, फिर उसको बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ। अंत में क्या था, सब स्पीच थेरेपी सब लग गए, सबने कोशिश की ये हमारी ध्वनियां बोल सके, मानव ध्वनि अकु विसर्जनिया कंठा, यहाँ कंठ से लेकर पफ भव मां, इतने हमारे पास जो वर्ण है ये सब वो बोल सके, लेकिन कोई उसको सिखा नहीं सका। उसने वही सीखा जो जंगल में उसने सुना था। जो हम सुनते हैं वही हम बोल सकते हैं। क्या लिखा है, एक डेफ चाइल्ड कैन नेवर स्पीक। यदि मनुष्य को अंदर के कानों से पहले मनुष्य को सुनाई नहीं देता, वो नहीं बोल पाता। इट इज सो बेसिक, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग हैज टू हियर फ्रॉम द इनर ईयर्स। वही उसने सुने अग्निमीड़े, फिर वो बोलने लगा। इट इज सो बेसिक, हम अपने वोकल कॉर्ड को एक्साइट ही नहीं कर पाते यदि वेद नहीं होते। आप मानकर चलिए इतनी देर, उसके बाद है लैंग्वेज की बात। मेरे ख्याल से समय हो गया है, ये स्लाइड्स मैं थोड़ी आगे लूंगा जल्दी जल्दी में। थैंक यू ऑल वेरी मच, नमस्ते।